ओम अज्ञानतिमिरंधस्य गणंजनशलाकयो चक्षुमितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं जन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति शापदान्तिकम् वंदे अहम श्रीगुरु श्रीद्रौपदकुलं श्रीगुरुं वैष्णवं श्रीरूपं सागरजातं सहगणरमणीतं तं सजीवं साधुतं सावधूतं परिजनसंहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदां सहगणललिता श्रीस्कन्दं च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांतो स्वामी नित्य नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशोत्तारिणी वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गुरुदेशे नमः पंचतत्तात्मकं कृष्णं भक्तरूप सर्पकं भक्तावतरण भक्तक्षम नमामि भक्तशक्तिकं हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकाकन्तो राधाकन्तो नमस्तुते तप्त कांचनी गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी विशोभानुसुते देवी प्रणामामि हरि प्रिये जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण। आज की प्रातःकालीन सत्र में आप सभी को हार्दिक स्वागतम है कृष्णमला मंदिर में। तो आज जो है अद्वैत आचार्यों की आविर्भाव तिथि सन 1437 में इनकी आविर्भाव तिथि है। चैतन्य महापुरुष 1486 महापुरुष का आविर्भाव तिथि और अद्वैताचार्य उनसे 49 साल बड़े थे। 1437 में 37 में चैतन्य इनकी आविर्भाव तिथि है। तो अद्वैत प्रकाश में बताते हैं कि अद्वैत आचार्य बांग्लादेश श्रीहट्ट जिला में नवा ग्राम लाउर जो स्थान है उनके नाम है। और उनके पिताजी का नाम है कुबेर आचार्य और लावहा देवी। ते बड़े ये जो कुबेर है ये साक्षात कुबेर जी है, धनुपति कुबेर जी। वो शिव जी को सदाशिव कब को पुत्र रूप में चाहते थे, तो इसके लिए ये कलियुग में वो कुबेर जी कुबेर आचार्य के रूप में अवतीर्ण हुआ बांग्लादेश श्रीहट्ट जिला में। तो और उनकी पत्नी लावहा देवी तिरने कोई बच्चे उनकी जन्म हुए और मर गए, जिसके बाद उन्होंने विष्णु की आराधना किया पुत्र के लिए और अपने क्षेत्र छोड़कर शांतिपुर में आ गए थे। गंगा जी के इधर निवास करने के लिए, गंगा तट पे निवास करने के लिए आ गए थे तो इधर रहे। इसके बाद गंगा जी के भी स्नान करते थे, गंगा से भी प्रार्थना करते थे, विष्णु आराधना करते थे पुत्र के लिए। तो उन्होंने एक दिन सपने में देखे कि सदाशिव वो पुकार रहे थे महाविष्णु को, तो महाविष्णु और सदाशिव, महाविष्णु उनको आलिंगन किए, सदाशिव को दोनों मिल गए, तो इसलिए दोनों हैं महाविष्णु और सदाशिव, दोनों के मिश्रण जो है ये अद्वैत आचार्य जी हैं। तब उन्होंने उनके हृदय में आए, इनकी हृदय से लावा देवी के हृदय में गए, तो इसके बाद उन्होंने दोनों स्वप्न देखे। फिर जब गर्भ संचार हो गया तब इन्हें ये शांतिपुर में हुआ, तो उनके देश के निसिंह बहादुरी राजा जो उनके राजा थे, उन्होंने उनको फिर बुलाया अपने देश में, वो उधर पंडित थे, राजसभा में पंडित थे कुबेराचार्य जी, उनको भी ना अच्छा नहीं लगते थे, उनको बुलाए तो राजा बुलाने से वो गए फिर बांग्लादेश में श्रीहट्ट में, फिर उधर रहे। आज माघ शुक्ला सप्तमी 1437 आज की तिथि है, माघ महीना के शुक्ला पक्ष के सप्तमी तिथि अद्वैत आचार्य की आविर्भाव तिथि है। इस शुभ तिथि में लावर धाम में श्री कमलाक्ष की आविर्भाव हुआ, उनके बचपन के उनके नाम माता पिता पिताजी देखे इनके दिव्य रूप का दर्शन किए सुधिका गृह में जाकर, और उनके बड़े उत्सव मनाए उनके जन्म उत्सव, फिर धीरे धीरे बड़े हुए और पढ़ने के लिए दिए, तो एक एक दिन में दो चार दिन में सभी को सीख लिया, वर्णमाला आदि बहुत जल्दी जल्दी उन्होंने सीखा। तो इसके बाद उन्होंने और थोड़ा व्याकरण आदि के पढ़ने लगे। एक बार तो राजा के एक विपुत्र थे, उसके साथ उनका मित्रता था। एक बार दोनों देवी मंदिर गए तो उसी समय वो राजकुमार जगह प्रणाम किया देवी काली को, और आचार्य को भी बोला आप भी प्रणाम करो, तो बार बार बोल रहे थे नहीं कर रहे थे, तब उन्होंने बहुत थोड़ा फोर्स किया राजकुमार ने, तो इतना जोर से उन्होंने चिल्लाए आवाज किया तो उससे उस बेहोश हो गया राजकुमार। जब बेहोश हो गया उनके साथ में उनके सिक्योरिटी वगैरह सब थे, तभी खबर दे दी कि राजकुमार बेहोश हो गया, उसको प्राण निकल गया। तो इसी वो जाके एक बामी का डीप होता है ना, उई के बड़े मिट्टी से बनाते ऊंचा, उसमें जाके कमलाक्ष छिप गया, छिपा हुआ है। सभी लोग आ गया, कुबेराचार्य भी आ गए, राजा भी आ गए, शरीर शोक में शोक मग्न हो गए। तब कमलाक्ष को ढूंढने लगा, कमलाक्ष को ढूंढे तो कमलाक्ष आ गए। कमलाक्ष आने से उनसे उन्होंने बोला कि आपने क्या किया, आपने इतना जोर से क्यों चिल्लाया, इसी से हार्ट फेल हो गया इसका, तो भी तो मरेगा। बोला मरा नहीं है, अब मैं इसको जिंदा कर देता हूं। क्या चाहिए, जाओ मंदिर में चरणामृत लेके आओ, विष्णु पाद दक। तो विष्णु पाद दक अपने मुख में डाले और शरीर में लगा दिया, तो वो पूरा द्वारा स्थिर हो गया, पूरा होश में आ गए। इसी प्रकार दस्ती थे इनके साथ। और फिर दूसरे एक दिन पिताजी के साथ काली पूजा, बंगाल में है ना, राजा है, काली पूजा बने कैसे होगा। तो काली पूजा के समय सभी लोग आए, कमलाक्ष प्रणाम नहीं कर रहे थे, 12 साल लगभग हो गया, 11-12 साल हो गया व्याकरण पर रहे थे, तो एक ही वो प्रणाम नहीं कर रहे थे बिल्कुल। तब फोर्स किया प्रणाम करने के लिए पिताजी, राजा भी है बहुत, ये किया आज क्यों नहीं प्रणाम कर रहे, क्यों नहीं, सभी इतने बड़े हो गया तो ऐसे कैसे। मतलब विष्णु को उन्होंने सिखाया कि विष्णु को प्रणाम करने से विष्णु आराधना करते उसके लिए दूसरा कोई जरूरत नहीं है। समझाया अभी कि तो वृक्ष के जड़ में पानी देने से, पत्ते पत्ते में, टहनी टहनी में पानी देने की जरूरत नहीं, हम तो विष्णु का आराधना करते, विष्णु को प्रणाम करते, सबके प्रणाम हो जाता है, सर्वदेव नमस्कार, विष्णु को नमस्कार करने से सर्वदेव नमस्कार हो जाते हैं। तैसे फिर भी जब फोर्स किया तभी उन्होंने प्रणाम किया। प्रणाम करते ही जब भी झुका प्रणाम किया सासत देवी चूर चूर हो गई। तो ऐसे घटना जब देखा सभी लोग चकित हो गया, राजा कुछ बोलेंगे इसी से वहां से कमलक्ष भी अंतर्धान हो गया। कमलक्ष वहां से आ गया कहां पे, शांतिपुर धाम। शांतिपुर में आकर दो तीन साल में, जो उनके पढ़ाई कंप्लीट करना था 13 साल में ही, लगभग 12-13 साल में उनका, 13-14 साल में पूरा, ये लोग अभी सूत्र याद करने में कितना कठिन है, एक बार सुनने से बस याद हो जाएगा। ऐसे कमलक्ष के तेज थे। लेकिन पिताजी जब देखे कि कमलक्ष नहीं है, ढूंढने लगे, रोने लगे, दोनों उनकी पत्नी भी, दोनों बिल्कुल पागल जैसे हो गए। ये कि पुत्र थे और इतनी सुंदर सदाशिव महाविष्णु का अवतार हैं, तीन के बिना कैसे पागल जैसे हो गए, तुमने सपनों। इसी प्रकार एक बार उनके मां के मन में इच्छा हुई कि हम शिव तीर्थ में स्नान करने के लिए इच्छा हुई माता की, लावा देवी की। तब उनके घर से थोड़ी दूर में एक स्थान है, एक नदी है, और उसके उनके उधर से इंडिया भारत की बॉर्डर जो कुछ त्रिपुरा के पहाड़ी वगैरह, वो सब त्रिपुरा नहीं, वो मेघालय के पहाड़ी वगैरह सब दिखाई देते हैं, उधर पहाड़ी है। तो बोलते आप तीर्थ ही, इतने तीर्थ में दूर दूर आप कैसे भ्रमण कर सकती है, तो मैं सब तीर्थ को बुला के लाता हूं। तब मधु त्रादशी, गौर पूर्णिमा के बाद एकादशी त्रादशी की तिथि में उन्होंने बोले जंगल में जाके गुफा में वो सभी तीर्थों को आह्वान किए, और गंगा यमुना सरस्वती सभी तीर्थ आए और वहां पे प्रकट जल धारा प्रभावित हुआ और वहां से उनके माताजी स्नान किए। तो अचानक वह इतने बार जैसे आ गए, वर्षा हो गए, और ये हम प्रत्यक्ष देखे हैं। हम थोड़ा इतना बातों में मानने वाला नहीं है। अभी कुशल 2013 में हम गए थे उस स्थान में, तो उसी तिथि में उसी स्थान में मैं भी था। अभी एक नदी है, नदी में किसी भी प्रकार हो, वर्षा हो, कुछ भी हो, जल वृद्धि हो जाएगा उधर उसी तिथि में। अचानक जैसे जल आ गया था उसी समय, अद्वैत आचार्य जब उनके शरीर तीर्थ को आह्वान किए थे जल आ गया था, अभी भी इस तिथि में लाखों लाख हिंदू लोग एकत्रित हो जाते हैं और उसमें स्नान करते हैं। आज की तिथि में भी वो जल मैं देखा, जो गाय वगैरह उस साइड में आए तो उसमें देखा जल भर रहा है, वृद्धि हो रहा जल की। आज तक उस तिथि में हजार हजार लाखों लाखों लोग हिंदू लोग जो है वो आके उधर स्नान करते हैं। तब उन्होंने कमलक्ष जब माता पिता इतना दुखी हो गए, इतने पुत्र के लिए इतना अनुसंधान, तो कमलक्ष वो दोनों सोचे कि हम तो वो कमलक्ष बिना हम तो जीवित ही नहीं रह सकते। तब कमलक्ष भी समझ गए कि माता पिता बहुत दुखी होंगे, एक पत्र भेजा माता पिता के लिए, मैं शांतिपुर में विद्वता प्राप्त करके अभी टोल खोलने वाला हूं, आप लोग इधर आ जाओ। तो अभी कोई स्कूल वगैरह खोलने के लिए बहुत तकलीफ है क्योंकि पैसा लेते हैं, पहले बिना पैसा का ये होता था, बिना पैसा में पढ़ा देते, आखिरी में को भी दक्षिणा दे दिया, जो भी दे दिया तो बस उसमें खुश है। तीसरे प्रकार उन्होंने जब इसी इतनी दुखी थी कुबराचार्यों और उनके पत्री, तभी उसमें एक व्यक्ति जाकर उनके जब पत्र दिए तो पत्र दे बहुत खुश हो गए, जैसे मरने वाले थे मुर्दा जैसे वो तुरंत जीवित हो गया। और उन्हें बाद में राजा को बोले कि नहीं, कमलाक्ष इधर है, कि मैं यहाँ नहीं रह सकता, मैं अपने पुत्र के पास जा रहा हूं। तो राजा से विदाई लेके कुबेराचार्य जी आ गए शांतिपुर में। शांतिपुर में आए और पिता माता की उन्होंने सेवा किया और उन्होंने स्कूल विद्या मतलब टोल व्याकरण की शिक्षा आदि देने के लिए उधर स्कूल खोले और से पढ़ने लगे। तो वो उनके पिताजी की आयु 90 साल हो गया, 90 साल हो गया। तो उन्होंने एक दिन बेटा कमलक्ष को बुलाया और बोले कि देखो तुम, मैं अभी मेरे जाने का समय हो गया, आप चले जाने के बाद मेरा पिंड दान करना। तब ऐसे करके एक समय आए तो उनके पिता माता दोनों एक ही साथ में भगवत धाम चले गए और कमलक्ष अभी शादी भी नहीं किए थे, तो उन्होंने पिता माता के लिए पिंडदान के लिए गया, गए फिर नाभि गया, कहाँ पे है, कहा नाभि गया, उड़ीसा में जाजपुर, उड़ीसा जाजपुर में नाभि गया में गए और अलग अलग तीर्थों में हर जगह इधर वृंदावन ध्रुव घाट में भी उन्होंने ये किए। तो ऐसे करते करते उन्होंने उड़ोपी में चला गया, माधवाचार्य इस वैष्णव गौरी जो ब्रह्म संप्रदाय की वैष्णव इनके से सन्यासी से मिले और माधवेंद्र पुरी पाद से मिले। उन्होंने तभी से कृष्ण प्रेम में पागल थे, माधवेंद्र उनसे मिले और बहुत उनके साथ सत्संग किए और माधवेंद्र पुरी पाद भी देखे उनकी इसको। तब उन्होंने बोले कि आप जो अपने पिताजी के लिए तीर्थ पिंडदान कर रहे हो ये करके आप चला जाना बंगाल में, अनंत संहिता में वर्णन है चैतन्य महाप्रभु अवतीर्ण होने वाले हैं, इसमें आपकी बहुत बड़ा रोल है। तो ऐसे फिर उन्होंने वृंदावन आए, वृंदावन आकर ध्रुव मथुरा में दर्शन किए, मथुरा दर्शन करके फिर ध्रुव घाट आदि इधर में अपने पिताजी के पिंडदान किए, फिर आए वृंदावन। वृक्ष के नीचे सोते थे रात को, तो बट वृक्ष में ये जो अद्वैत वट आप लोग देखे हैं, अद्वैत वट देखे, बिहारी जी मंदिर जाएंगे उधर से परिक्रमा से लेफ्ट साइड में प्रवेश करेंगे, अंदर थोड़ा इधर परिक्रमा से अंदर प्रवेश करेंगे, वो इधर घूमते वह अद्वैत वट है। उस बट वृक्ष के नीचे में आग वृंदावन आके विश्राम कर रहे थे। उन्हें स्वप्न में आया मदन मोहन जी स्वप्न में दिखा कि मैं कुब्जा के द्वारा मैं सेवित हूं, कुब्जा के द्वारा सेवित विग्रह मैं हूं, तो मैं इस यवन का प्रभाव से मैं यहां पे मुझे मिट्टी के नीचे रखा है, आप मुझे इससे निकाल के मुझे स्थापना करो और पूजा करो। तभी उन्होंने जाकर गांव में सुबह उठे, सपने ऐसे देखे ठाकुर जी से सपने में आए, तो जाके इधर आसपास ही बुरजार भी थे और अकरूर गांव थे, इसी सभी लोगों यहाँ से लोग बुलाए, बुला के जाके उनको मिट्टी से निकाले और उनको अभिषेक करके प्रतिष्ठा किया। प्रतिष्ठा छोटे घासपुर से सुडक कुटिया बना के ही टेम्पल है, ऐसे टेम्पल बना के पूजे। तो एक ब्रजवासी ब्राह्मण को उन्होंने सेवा में नियुक्त किया और ऐसे सेवा चलते रहा, ब्रजवासी लोग आते रहे, उनकी सेवा अच्छे से चलते रहा। तो मिलस यवन लोगों को पता चला, बोला हिंदू की भगवान है। तो एक दिन अद्वैत आचार्य जी वृंदावन परिक्रमा के लिए निकल पड़े, इसी समय एक यमुन लोग आ गए। तो यमुन लोग आए तो पुजारी डर के भाग गए, और ठाकुर जी क्या करे, एक फूल बट वृक्ष के नीचे एक साइड में बहुत सारे फूल इकट्ठा किया हुआ था, वो देखे अपने तो आत्मरक्षा करना चाहिए, तो उन्होंने जाके मदन गोपाल बन गए, छोटे बन के उस फूल के अंदर चले गए। यमुन लोग आके ठाकुर जी को मिला नहीं, वो देखा ढूंढ ढांड के चले गए। तो अद्वैत आचार्य परिक्रमा करके आए और ठाकुर जी के देखे नहीं, उपवास करके बड़े दुखी हो गए, कहा चले गए, पुजारी भी चला गया, पुजारी चला गया। तो रात को फिर आचार्यों को मदन गोपाल जी बोलते हैं सेवा क्यों नहीं कर रहे हो, मैं तो फूल के अंदर हूं, फूल ये जो उमले चाहे तो सेवक तो भाग गया था, तो मैं अकेला अपने को सुरक्षा प्रदान किया तो मैं फूल के अंदर घुस गया हूं, फूल से वहां से निकाल के सेवा करो। तो उन्होंने उस फूल के अंदर से पुराने जैसे फूल रखा हुआ था उसको अंदर से निकाल के उनके सेवा किए और यमुना जी में गए तो देखा वो ब्राह्मण घूम रहे, बोलता सेवा क्यों नहीं कर रहे ठाकुर जी की, बोला ठाकुर जी है क्या, ठाकुर जी तो नहीं है। तब उन्होंने सभी बात बताया कि नहीं वो फूल के अंदर थे, मिले से यमन लोग आए आप भी भाग गए हो तो ठाकुर जी आपने आपको सुरक्षा किए हैं। तो अब इसी प्रकार मदन गोपाल जी का सेवा कर रहे थे, बड़े बहुत ही आनंद खुशी में थे। एक दिन आकाशवाणी हुआ कि आचार्यों आप चैतन्य महाप्रभु अवतीर्ण होने वाले हैं, आप इनको ये चौबे के परिवार में आप इन ठाकुर जी को देकर आप बंगाल चला जाओ। बोला नहीं, मैं ये इतना प्राणनाथ है, इनको छोड़कर मैं कैसे जीवित रह सकता हूं, ये मदन गोपाल को मैं नहीं छोड़ सकता हूं। तब उन्होंने उनकी बड़े शोक मग्न हो गए, बड़े चिंतित हो गए। तब उन्होंने ठाकुर जी बताए कि देखो विशोखा देवी के विशोखा सखी के द्वारा एक श्री कृष्ण के पत्थर में लेकिन भगवान की एक मूर्ति जैसे ही बनाया हुआ है, क्योंकि जब भगवान मथुरा में चले गए राधा रानी उनको दर्शन करके उनको आलिंगन करते थे, कृष्ण जैसे ही समझते थे राधा रानी के आलिंगन से एकदम प्रतिष्ठित हो गए। बोला कुंज वन में ये पतला पतला पत्थर में था, तो उसको आप ले जाओ, वो साक्षात कृष्ण है और पूरा वृत्तांत उनके सपने में बता दिया कि ये विशोखा देवी के तरह बनाया हुआ है, श्रीमती राधारानी का आलिंगन करते थे, साक्षात कृष्ण है, अरे ही मदन गोपाल तुम समझो। तो ऐसे जब सपने देखे तो चौबे को मदन मोहन को संभाल के दिया और उन्होंने उस पतले से इसमें छोटे से इसमें अभी अधिक परिवार में है नहीं लेकिन उनको ये मिला था। मदन गोपाल मिले और मदन गोपाल को लेकर उन्होंने बंगाल चले गए शांतिपुर में, शांतिपुर में रहने लगे, माधवपुरी आए और उनको दीक्षा प्रदान किए और पहले अद्वैत आचार्य जी ने इस उन्होंने माधवेन्द्रपुरी बोला कि राधारानी को भी राधारानी को भी प्रतिष्ठा करो। तभी से राधारानी वो कैसे ऐसे जैसे मदन गोपाल तो ऐसे कि इसमें राधारानी बनाकर राधारानी दोनों को प्रतिष्ठा की, युगल पूजा अद्वैत आचार्यों ने पहले शुरू किए। आप लोग जानते थे ठाकुर जी कोई राधारानी नहीं थी ना, कोई ठाकुर जी के पास, कोई भी ठाकुर जी के पास मदन मोहन जी गोविंद जी गोपीनाथ जी गोपाल जी सभी कोई राधारानी नहीं थे, एक ही में साथ राधारानी नहीं थे गोपीनाथ जी, ये बाद में सब राधारानी उड़ीसा में दो राधारानी आए बाद में, तो लक्ष्मी रूप में पूजा करने सोच रहे थे लेकिन राधारानी बाद में बताए मैं राधारानी हूं। तो राजा को खबर दिए, राजा फिर जानवा माता थी तब जानवा माता जी लेके आए दो दो राधारानी। तीसरे प्रकार जो है राधारानी की प्रतिष्ठा पहले अद्वैत आचार्य माधवेन्द्र के सलाह से किए और बोले विवाह करो, उम्र बहुत हो चुका था। फिर विवाह के लिए उन्होंने एक दिन सीता ठाकुरानी जो है ये युगमाया है पूर्णमासी है पूर्णमासी युगमाया, तो इन्होंने इधर नारायणपुर एक गांव है गंगा के उस पर में, इसमें एक राजा थे और उनकी एक बेटी थी उनकी श्री ठाकुरानी, और दूसरा एक दिन एक तालाब था, तालाब में बहुत कमल होते थे और वो कमल भगवान की पूजा के लिए कमल तोड़ने गए तो एक कमल के अंदर बहुत बड़े कमल थे उसमें सुंदर एक कन्या मिले और लेके आए थे वो उनकी पत्नी को दे दिए, और वो है सीता ठाकुरानी और वो जो अपना बेटी थी ये है श्री ठाकुरानी, ये दोनों उनकी बेटी हैं। बड़ी हो गए तो शादी के लिए भी सोच रहे थे, एक दिन गंगा पार जा रहे थे इसी समय दोनों बेटी को ले गए गंगा में, नाव में बहुत चल नहीं रहा था, तो दोनों बेटी को जब लेके गया तो नाव ठीक से चला, उस पर गए तो देखे आचार्य जी, अद्वैत आचार्य जी उधर स्नान कर रहे थे। लेकिन अद्वैत आचार्य को देखकर ये सीता और श्री दोनों समझ गए और ये तो दिव्य पुरुष है ही है, तो दोनों मन ही मन सोच रहे थे ये हमारे पति रूप में मिल जाते। तो इसी प्रकार उनसे बातचीत हुआ, बातचीत होने से उनके जो ससुर बनेंगे तो उनके साथ बातचीत हुआ, उन्होंने ले गए और उनकी महिमा ऐसे फैला हुआ था। अद्वैत आचार्य तो घर पे गए तो ऐसे उसके बाद उन्होंने दोनों कन्या की मन को जानकर उनके पिताजी दोनों कन्या की शादी अद्वैत आचार्य के पास दी। तब इन्होंने ये माधवेंद्रपुरी का आज्ञा था कि आप प्रचार कार्य के लिए सेवा पूजा के लिए आप शादी करो, तो उन्होंने शादी स्वीकार की है। तो इसी प्रकार उन्होंने शांतिपुर में रहकर ये कर रहे थे। तो भक्त लोग पहले प्रयास कर रहे थे कि कली संतरण उपनिषद आदि से समझ गया कि कलियुग का युग धर्म क्या है। प्रकटि आचार्य देखे ने सकलि संसार, कृष्ण भक्ति गंधहीन विषय व्यवहार, केहो पापे केहो पुण्ये करि विषय भोग, भक्ति गंध नहीं जाते जाए भव रोग, लोक गति देखि आचार्य करुण हृदय, विचार करे लोकेर कोई ही तो हाय। तो प्रकट होकर आचार्य ने देखने लगा केहो पापे केहो पुण्य, कोई पाप कर्म के द्वारा कोई पुण्य कर्म के द्वारा विषय भोग करते हैं, भक्ति शुद्ध भक्ति केवला भक्ति की गंध मात्र भी नहीं है जिसमें भवरोग जन्म मृत्यु जरा व्याधि भवरोग नहीं जाते जाए भवरोग। पुण्य कर्म करने से क्या होगा, सीने पुण्य मरते लोग विसंति नरक जाएगा फिर इधर आ जाएगा, फिर पाप कर्म करना सड़ के जाएगा फिर इधर आएगा, फिर पाप कर्म करेगा नरक जाएगा, पुण्य कर्म करके सड़ के जाएगा, ऐसी चलते रहेगा चक्कर। भक्ति गंध नहीं जाते जाएगा, लोक गति देखे आचार्य करुण, आचार्य जो भगवान के भक्त होते हैं उनके हृदय बहुत करुणा है, उनके अंदर करुण हृदय। लोक की गति को देखा कि केवल कर्म कांड करके पुण्य कर्म करके या पाप कर्म करके विषय को भुगते जा रहे हैं, कोई मंदिर में चला जाओ ये चराव ऐसे होगा वो चराव ऐसे होगा, कृष्ण मंदिर में यही एक ही बात है, अहित की अपहति यथा कोई इसके बारे में नहीं। तो इसे प्रकार मतलब भवगम भक्ति गन मात्र भी नहीं जिसमें भवरोग जाने वाले लोग को देखकर करुण उनके हृदय में करुणा आ गए, विचार करने लगे कैसे हित है। तो उन्होंने शास्त्र देखे, शास्त्र में देखे कि कलि युग नाम रूपे कृष्ण अवतार, कलि काले कोई से हवे कृष्ण अवतार कैसे हित होगा। तो उन्होंने सोचे कि भगवान को आना चाहिए प्रचार के लिए, तो उन्होंने शास्त्र देखे कि नाम रूप में कलि युग में अवतार है, कलि काल में कैसे कृष्ण अवतार होगा और कैसे प्रचार हुई, बद्ध जीव को कैसे प्रभु नहीं आएंगे, कैसे शुद्ध भक्ति के प्रचार नहीं करेंगे तो कैसे इसको उद्धार होगी। तब उन्होंने विचार किया शुद्ध भावे करीब कृष्ण आराधना सदन्य निरंतर करीब निवेदने, तो शुद्ध भाव में मैं कृष्ण आराधना करूंगा, आनिया कृष्ण करीब कीर्तन संचार तबे तो अद्वैत नाम सफल हो जामार। तो तुमने शुद्ध भाव में मैं कृष्ण आराधना करूंगा, जगत मंगल के लिए जगत की कल्याण के लिए कृष्ण शुद्ध भाव से कृष्ण आराधना करूंगा, सदन्य निरंतर मैं निवेदन करते रहूंगा और कृष्ण को लाऊंगा कीर्तन के प्रचार करवाऊंगा, तभी मेरा नाम अद्वैत, तो मैं दो नहीं हूं मैं एक हूं अद्वैत, दो नहीं मेरे अंदर, काम बनाने के लिए लगना पड़ता है, उठ के लगना पड़ता है, बिल्कुल दिन रात 24 घंटे एक ही लाना है अद्वैत है। तो वीर मेरा नाम अद्वैत हो गया, अद्वैत है मैं, तीस नाम की सफलता मैं कृष्ण को लाऊंगा, कीर्तन का प्रचार करवाऊंगा, तब मेरा नाम सफल होगा। ये संकल्प है। संकल्प कोई भी कार्य देखिए शास्त्रों में नहीं है, कलयुग में अवतरी नहीं है, बोलता त्रियुगी है, लेकिन भक्तों के भक्त में इतना शक्ति आएंगे नहीं, क्या बात है, आना ही पड़ेगा। ये भक्तों की भक्ति की शक्ति है। हम तो जो प्राप्त है वो ही प्राप्त नहीं कर सकते, हमारा कितना दुर्बलता है, प्राप्त वो भी नहीं तो ये, लेकिन कृष्ण को लाऊंगा, कीर्तन का प्रचार करूंगा, तब मेरा नाम अद्वैत है। कृष्ण भावे कृष्ण वासे कोनो आराधना विचारिते एको शोलोक आइल तार मने। लेकिन कृष्ण को वश करने के लिए मैं क्या आराधना करूं, पहले विधान नहीं ढूंढा, पहले संकल्प किया, बाद में शास्त्रों जाकर ढूंढने लगे कैसे लाओ, कैसे, कोई सिस्टम तो होते हैं ना, कोई कोई सूत्र होते हैं, कोई शास्त्रों में विधि होते हैं, उसको अनुसार कार्य करना पड़ता है, बिना विधान से कार्य नहीं बनता है। इसलिए शास्त्र में भजन की बहुत सारे प्रक्रिया अलग 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 इसमें अलग अलग प्रक्रिया दिया है भजन करने की, उसी भजन के सूत्र के अनुसार आप भजन करेंगे तभी तो होगा ना। तो कृष्ण वास करने क्या आराधना मैं करूं, तो इसी प्रकार उन्होंने सोचने लगे। विचारित एक श्लोक आयलोतार माने तुलसी दल मात्रे न जल से चुलकने चुलकन वा विकृण दशात्मा वा भक्त व भक्त भसल्ला। तुलसी दल और मात्र थोड़ा जल, गंगा जल देने से भक्त वसल्ला भगवान विकृण दशात्मा, वो बिक जाते उस भक्त के हाथ में बिक जाते हैं, भक्तव्य भक्त वसल, ऐसे भक्त वसल भगवान है। कि तुलसी दल चुल के माने लोटा भर के नहीं, घरा भर के नहीं, गैलन भर के नहीं, चुल को इतना ही चुल्लू भर की जल देना है, तुलसी पत्ता देना है, बस इतने देने से। तो ये जब इसको मिला तब तो उन्होंने बहुत खुश हो गया। तो सोलो करते उन्होंने विचार करने लगे और कृष्ण कृष्ण के जल तुलसी दे जई जान तार निशोधिते कृष्ण करे नो जतो चिंतन। कृष्ण को जल और तुलसी जो देते हैं उसको ऋण चुकाने के लिए भगवान सोचते रहते, अरे मुझे इतना दे दिया मैं क्या दू। तो केवल तुलसी पत्ता और जल कोई इतना मूल्यवान वस्तु नहीं, फ्री, दोनों फ्री में मिलता है कोई मूल्यवान नहीं है इसमें से एक भी वस्तु, दोनों फ्री में है। देने के बाद बोलते हैं मेरे पास देने के समान है, तभी आत्मा बेची करे ऋण शोधन, अपने आप को उस भक्तों को दे देते हैं। ये श्लोक जब मिल गया उनको कॉन्फिडेंस हो गया, मैं तो एकदम अच्छा से मैं उनको कितना एक चुल्लू क्या लोटा के लोटा गंगा शुद्ध गंगा जल डालते रहूंगा, आएंगे ना तुलसी मंजरी पर तोड़ तोड़ के वो भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल में डाल रहा हूं, ऐसे सलगम में चिंतन करके बार बार एकांत भाव से संकल्प चैतन्य भागवत मतलब संकल्प करके पूजा करने लगे और ऊपर देखते हैं और हुंकार करते रह चिल्लाते रहते हैं आओ। तो इसी प्रकार वो हमेशा एक बार नहीं वो गंगा के तट पे जाकर सलगरम रखते तुलसी ले जाते और तुलसी चढ़ाते और गंगा जल ढालते ही रहते हैं और एक ही संकल्प करिए पूछे। संकल्प हमारा क्या होता है, संकल्प विकल्प हो जाता, संकल्प विकल्प संकल्प विकल्प, लेकिन ये बोलते मैं अद्वैत हूं। इसके बाद एक दिन भक्तों से भक्त लोग रहस्य करके बोल देते हैं आएंगे क्या, बोला नहीं आएंगे, इतना मैं आराधना कर रहा हूं, इतना मैं ये कर रहा हूं, इतना दिन रात 24 घंटा मैं इसको ये कर रहा, नहीं आएंगे, नहीं आएंगे तो उनका सृष्टि में सर्वनाश कर दूंगा, अपने चार हाथ प्रकट करके सुदर्शन चक्र लाकर सबका गर्दन उड़ा दूंगा, सृष्टि उनका सृष्टि संहार कर दूंगा, मैं कुछ नहीं रखूंगा, आएंगे नहीं। ऐसे करके उन्होंने पूजा करके चैतन्य महाप्रभु को लेते। ये भक्तों के संकल्प, ये अद्वैत आचार्य जो है बोलते हैं कि ये जैसे कोई देवी देवता को पूजा करते हैं या कृष्ण के कलश बैठा के उनको आह्वान करते हैं, तो ये दोनों को लाने के लिए ये अद्वैत आचार्य ने चैतन्य और नित्यानंद को लाने के लिए आह्वान किए और पूजा के बाद फिर विसर्जन करते हैं। तो जाने से पहले वो लिख दिया, आउल रे कोहियो बाउल बाजारे नाभिका चावल। तो इसी प्रकार उन्होंने लिख दिया पत्र के, प्रभु अभी जो आपका कार्य था समापन हो गया, आप जा सकते हो। इसी प्रकार चैतन्य महाप्रभु गए, जैसे आते समय आचार्य जी आए, नित्यानंद प्रभु आए, महाप्रभु जी आए। जाते समय कैसे हुआ, महाप्रभु पहले गए, फिर नित्यानंद प्रभु गए, फिर आचार्य जी। ये लाया, प्रचार किए, तो प्रचार करके सभी को उन दोनों को भेज दिए, फिर बाद में गए। 125 साल, 125 साल तक प्रकट रहे। इसी प्रकार उन्होंने महाप्रभु को लाने के लिए ये किए और पूजा करके महाप्रभु को प्रकट किए। और ऐसे भाव है, जो जितने ऊंचा जाते हैं उनके भाव इतने उच्च होते हैं। केहो माने केहो ना माने सब तरवादास, जे ना माने तार है से पापे नाश। चैतन्यर दास मई चैतन्यर दास, तारो दासर दासो मुयो तारो दासर दास। कोई मानता है कोई नहीं मानता, सभी तार दास। मतलब हम लोग जो जीव है, कोई माने चाहे कोई ना माने, सब भगवान के दास है। जीवी स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास, कृष्णेर तटस्थ शक्ति भेदाभेद प्रकाश। तो जीव के जो स्वरूप है, जो वास्तविक स्थिति है, ये भगवान श्री कृष्ण के नित्य दास है। तो बोले कोई मानता है कोई नहीं मानता, सभी तार दास। जो नहीं मानता है उस पाप से उसका सर्वनाश होता है, सही पापे है तार नाश। जे ना माने सही पापे है तार नाश। जो नहीं मानते उसी पाप के द्वारा उस नाश हो जाते हैं। और बोलते हैं मैं चैतन्य का दास हूं, मैं चैतन्य का दास हूं, मैं चैतन्य का दास हूं, मैं उनका दासों का दास हूं। महाविष्णु महाविष्णु अद्वैत आचार्य जो नित्यानंद प्रभु बोलते अमर एक नियल भजे गौर हरि, मैं उनके पीछे। तो इसी प्रकार दासो भाव, बलराम जी दास, उनसे बड़े दास कोई नहीं हो सकता। दास भाव से सेवा करते, उनके चिन्ह, उनके आसन, उनके वस्त्र, उनके आभूषण, उनका पालंग, उनके धाम, सभी कुछ, उनके शैया पालंग, सब कुछ बलराम जी है। इसी प्रकार वो ठोस ठोस के ताल ठोक ठोक बोलता, मैं चैतन्य के दास हूं, मैं चैतन्य का दास हूं, मैं चैतन्य का दास हूं, उनका दासों का दास हूं। तो इसी प्रकार आचार्य जी ये लोग प्रचार करने लगे, प्रचार करने के लिए प्रचार करके ये लोग प्रयास किया। लेकिन प्रयास जब किया तब देखा संभव नहीं है, हम लोगों को द्वारा संभव नहीं है। तो लोग जब श्रीवास अद्वैत आचार्य जी जितने भी भक्त थे, ये सभी लोग महापुरुष जो बड़े आयु में बहुत बड़े थे, ये लोग प्रयास किया था प्रचार करने के लिए। तो हुआ क्या, कोई अपनाया तो नहीं और उल्टा निंदा करना शुरू कर दिया। बोले कभी जोर से हरिनाम नहीं होता था क्या, पागल हो गया, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, सभी हरिनाम कर रहे हो, कीर्तन कर रहे हो। भगवान के नाम हम मंत्र होते हैं, धीरे धीरे जपना चाहिए, आवाज नहीं करना चाहिए। बोलते हैं ना भजो नीताय गौर राधेश्याम, जपो हरे कृष्ण हरे राम, जोर से नहीं जप करना है। तो जोर से क्यों, पर ये नाम की मंत्र की वीडियो हानि होते हैं, जोर जोर से बोलने से। जो गायत्री मंत्र आदि है वो जोर से उच्चारण नहीं कर सकते हैं, तो ऐसे ही तो क्यों कर रहे हो। तो इसको पर देखा, उन्होंने देखे कि हम लोग दूसरे के भलाई करना चाहते, लेकिन ये हम लोग निंदा कर रहे हैं तो इसको अहित होगा, इसलिए उनको बंद कर दिया और प्रयास किया भगवान को लाने के लिए। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु का आने का कारण कोई बताए हैं, कोई कारण है राधारानी के भाव को आस्वादन करने के लिए, क्योंकि कृष्ण इस रस को आस्वादन नहीं कर पाया, कि राधारानी की मन में कोई सुख आस्वादन करने का इच्छा नहीं है, लेकिन कृष्ण जब राधारानी को देखकर खुश होते थे, उस खुशी को देखकर राधारानी उससे करोड़ गुना खुशी होते थे, इधर कृष्ण को समझ में नहीं आता थी। इसके लिए उन्होंने इस भक्तो भाव में राधारानी के भाव और कांति को लेकर भगवान आए, ये मुख्य कारण है। युवो धर्म प्रचार करना, हरिनाम के प्रचार करना ये कारण है, और बाहरी कारण है, ये भी एक कारण है कि अद्वैत आचार्य की पुकार है। एक कारण से नहीं आते प्रभु, कोई कारण जब इकट्ठा होते हैं तो प्रभु प्रकट होते हैं, तो ये भी इनकी पुकार भी एक कारण है। तब चैतन्य महाप्रभु इनके पुकार से जब उन्होंने ऐसे संकल्प करके पूजा की तब ऐसे, और ऐसे भक्ति निष्ठा उनके अंदर है। गीता भागवत, गीता में हर श्लोक में जहां पे भक्ति नहीं है, इस श्लोक में उनको भक्ति नहीं दिखाई देते थे, तो हमें समझना चाहिए हमें कितना सीरियस होना चाहिए। हमारा आचार्य, हमारा पूर्ववर्ती आचार्य एक एक विषय में कितना गंभीर थे, हमें सभी इतना गंभीर बनना पड़ेगा कि जो भी श्लोक में गीता में श्लोक में उनको भक्ति नहीं दिखाई देते थे कि उनको समझ में नहीं आती थी इसमें, उन्होंने श्लोक को दोष नहीं देते थे, बोले मेरे में कमी है, मुझे समझ में नहीं आ रही है इसमें भक्ति कहां पे है, तो उसलिए क्या करते थे, उपवास फास्टिंग, जब तक इसकी अर्थ समझ में नहीं आएगी तब तक मैं उपवास करते रहूंगा। तो ये ही भक्त की निष्ठा, ऐसे करेगा सीखेगा नहीं, सभी को सीख जाएगा, ऐसे भक्त की एकाग्रता, ऐसे निष्ठा, शास्त्रों दूसरा में कमी नहीं, कमी अपने में, मुझे कमी है इसलिए मुझे समझ में नहीं आ रही है, क्योंकि इसमें तो भक्ति होंगे गीता में सब, तो उनके 600 श्लोक में भक्ति की व्याख्या है, भक्ति है। तो चैतन्य महाप्रभु एक बार जब प्रकाश महाप्रकाश में आ गए थे, बोला पता नहीं तुझे तू जब फास्टिंग करता था मैं प्रकट नहीं हुआ महाप्रभु, उससे पहले तू जब नहीं समझ पाता था फास्टिंग करके सोता था, मैं आके तुमको समझाता था गीता को। ये तो चैतन्य भागवत में बोलता है, एक बार ऐसे बार बार होता था, जो भी श्लोक में समझ में नहीं आता था तो उन्होंने ऐसे फास्टिंग करते थे, तभी समझ लो, समझ नहीं समझ में है तो क्या करना है, फास्टिंग करना है। हाँ, ऐसे लगा रहेगा प्रभु आएंगे डायरेक्ट, जैसे मेरा भक्त है ये समझ में नहीं आ रहा है तो फास्टिंग कर रहे, तो वो खुद आके समझाना पड़ेगा, नहीं तो उपवास भक्त को उपवास प्रभु कैसे सहन करेंगे। तीसरे प्रकार बोला, कोई बार मैं आया हूं, कोई बार आके तुझे, तो गीता की एक पाठ जो है उन्होंने सिखाया, बोलता ये पाठ गलत कर रहे हैं, तो सर्वतः, तो चैतन्य महाप्रभु बोलते सर्वतः पाठ नहीं, सर्वतः पानी पदतम, तो इसमें बोलता है सर्वतो नहीं सर्वत्र, ये गीता में लिखा हुआ है, मैं अभी ऊपर देखा था सर्वतः लिखा हुआ है, चैतन्य भागवत में लिखा है बोला सर्वतो जो है ये सर्वतो नहीं, बोला सर्वत्र महाप्रभु, गीता भी संशोधन, बोला ये गलत हो रहा है, सर्वत्र होना चाहिए, सर्वतो पानी पदस्तम जो है ना श्लोक है ना, तेरह नंबर श्लोक में, तेरह हमारा ये गीता प्रेस हमारा इसमें तेरह में होगा शायद, नहीं तो इसमें सर्वत्र महाप्रभु बोलता है सर्वत्र होना चाहिए, तो बोले सभी लोग इसको गलत पढ़ते हैं, महाप्रभु अद्वैताचार्य को सिखाया। तीसरे प्रकार इतने संकल्पित थे, तो और क्या है, एक बार चैतन्य महाप्रभु जी कीर्तन में, कीर्तन मंडल में जब कीर्तन हो रहा था, इसी समय सबको आशीर्वाद दिया, बोला जो भी जिसको आशीर्वाद चाहिए आशीर्वाद ले लो, तो उन्होंने आशीर्वाद, जो जिसका आशीर्वाद मांगते रहा, सभी लोग चाहा कि ये हैं, तो जैसे आए भक्तों का प्रॉब्लम है ना, माता पिता आने नहीं देते हैं, उसी समय भी कुछ लोगों का प्रॉब्लम था, बोले हमें कीर्तन में आने के लिए रुकावट करते हैं, इसकी ये पता चला जाए कि हमारा माता पिता को भक्ति हो, कैसे भी जो 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 मांगना है। आचार्य बोला प्रभु यदि आप मुझे देना है तो यही दे दीजिए, ये दरवाजा बंद करके क्यों कीर्तन, मुझे आप आशीर्वाद देना चाहते हैं तो ये दे दीजिए। सभी लोग बाहर चंडाल स्त्री बाल वृद्धो अबाल वनिता सबको अवध रूप से ये रुद्रद्वार कीर्तन, क्योंकि प्रवेश नहीं करने देते थे एकांत तो भक्त। आप लोग जानते हैं एक ब्रह्मचारी थे नवद्वीप में, केवल दूध और केला, एकदम ब्रह्मचारी है, दूध और केला के अलावा कुछ खाए नहीं, पक्का केला और दूध पीकर रहते थे। उसको भी कीर्तन से महाप्रभु निकालने चाह रहे थे, बोले ये कीर्तन मतलब दूध और केला खाकर हमारा कीर्तन में भाग नहीं ले सकता है। तो कभी कभी ऐसे इष्टा कुछ करने से अहंकार भी आ जाता है, मैं ऐसे ब्रह्मचारी हूं ना हम विप्र, कोई अभिमान नहीं होना चाहिए। तो उसके उसमें ही दोष था कि अभिमान है, ऐसे विनम्र भक्त नहीं है। इसी प्रकार तू ऐसे लोगों परमेश्वर महापुरुष जो एक साल तक कीर्तन किया था घर के अंदर श्रीवास के घर में, दरवाजा बंद करके कितने लोग दरवाजा खटखट, किसी को प्रवेश नहीं, बोले ऐसे नहीं दरवाजा खोलो और नगर में चलो, ये आचार्यों का प्रार्थना है। तभी बोला सभी के लिए कोई विचार नहीं, जो बोल सकता है पंगु अंग लंगड़ा जो भी है सबको प्रभु प्रेम देना है। तब कभी कभी भगवान से भी भगवान भक्तों की करुणा की सीमा उनके भी छोड़ के जाते हैं। तो भगवान महाप्रभु बहुत खुश है, महाप्रभु तो चाहते हैं, जब भक्त बोलते और खुश हो जाता है और जल्दी कर देते हैं, बोले भक्त चाहे ना। तभी बोला ठीक है आज से तुम इस प्रेम की भंडारी हो। चाबी निकल के महाप्रभु दे दिया, बोला आज से तुम भंडारी हो। आचार्य जो भंडारे प्रेम शतगुण बढ़े, स्त्री वृद्ध स्त्री बालक वृद्ध सवारे डुबाइले, सज्जन दुर्जन पुंगु जड़ु अंधकार प्रेम बन्ना डुबाइले जगतेरे गण। तो ऐसे सबको प्रेम दिया, तो आचार्य उछाली लो प्रेम सब डुगलो। तो इसी प्रकार आचार्य भंडारे प्रेम शतगुण बढ़े, तो इसलिए तब से इस प्रेम की भंडारी अद्वैत आचार्य है। तो ये भक्ति धन है, इसको जितने बांटेंगे उससे सौगुणा वृद्धि होगा। आचार्य भंडारे प्रेम शतगुण बढ़े, लेकिन कैसे वितरण करना है, चैतन्यर दासमयी चैतन्यर दास, तार दासर दासमयी तार दासर दास, घमंड हो गया अहंकार हो गया बाढ़ेगा नहीं, ऐसे भाव होना है। ये बिल्कुल हृदय से अंदर ऐसी भावना, चैतन्य दास चैतन्य के दास, तार दशर दास तार दशर दास, ये भाव होना चाहिए। तभी तो ऐसे तब से भंडारी बना दिया, इनकी भंडारी है। तो क्या करते थे, कीर्तन करते समय एक बार उनको शांतिपुर से बुलाया, रामाई को बोलाया कि वो मेरा प्रकाश को देखना चाहते हैं, इतना आराधना किया उतना पूजा किया, इससे वैकुंठ से मुझे मैं आ गया, उनको बोलो प्रत्यक्ष आकर मुझे देखे। तो रामाई श्रीवास के भाई, चार भाई थे उनके, श्रीवास के पास छोटे जो थे श्री राम है, और सबसे बड़े भाई जो नलिनी उनकी तो देहांत हो गया था पहले ही, तो श्री राम को भेज दिया, बोला जाओ उनको बुला के लाओ। शांतिपुर 40 किलोमीटर लगभग रात को चला गया बुलाने के लिए, 40 किलोमीटर हो जाएगा। तो वो जाके आचार्य को बोले कि आपको बुलाया, तो वो इतनी खुश हो गया आदित्य आचार्य, जब महापुरुष भाव प्रकाश में आ गए तो वो सभी सीता ठाकुरानी को बोला सभी सामग्री सजाओ पूजा के लिए, षोड़श उपचार में जाके पूजा करूंगा, ऐसे सब सजा के लाए। आकर घर पे आके बोल दे कि बोलो तुम अकेला रामाई चले जाओ, बोला आए नहीं बोल देना। तो रामाई प्रवेश कर रहे थे, आकर महाप्रभु तो भाव में है, तो आवेश में है, भगवान के आवेश आ जाते, क्योंकि छुपा के रखते ना महाप्रभु, भक्त भक्त भाव में है ना, लेकिन कभी कभी आ जाता था। तो इसी समय जब ये रामायण प्रवेश कर रहे थे, इसी समय बोले क्या 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 समझा के बुझाए को, आदित्य आचार्य नहीं नंदन आचार्य के घर में रुका छुपा हुआ है, बुलाओ उसको, मुझे रूप को दर। तो भी वो समझ गया, हाँ एकदम पक्का है, आइडिया कोई गलत नहीं पूरा। देखो तब आकर उन्होंने बहुत अच्छा से उनको पूजा किया, उनको पूजा पूजा किए, पूजा करके षोडश उपचार पूजा की, स्तुति किया और ऐसे, तो ऐसे ही पूजा करते हैं। तो कभी कभी दोनों में बहुत लड़ाई होते हैं। महाप्रभु चाहते ये सम्मान है, मेरा पिताजी का बराबर है, ये मेरा चरण छूते हैं, तो महाप्रभु कभी कभी अद्वैत आचार्य का चरण लेकर अपने शरीर में घिसते हैं। और इनका मन में यही भाव है, चैतन्य का दास उनको बहुत बहुत खराब लगता है कि कैसे भाई भगवान होकर मेरे ऐसे, उन अद्वैत आचार्य तो आयु में ज्यादा हो गया, महाप्रभु तो ऐसे बलवान है, सिंह है, चैतन्य सिंहर नवदेवे अवतार, तो घिस लेते हैं। तो इसी प्रकार दोनों दोनों का चरण ऐसे होते हैं, तो नाराज होकर उन्होंने बोले ठीक है, ऐसे चलेगा नहीं, ऐसे प्रेम व्यवहार में काम नहीं, उल्टा कुछ काम करना पड़ेगा। यह चले गए शांतिपुर, शांतिपुर जाके बोला भक्ति से ज्ञान बढ़ा है, योग वशिष्ठ का शिक्षा देना शुरू कर दिया। तो इसी प्रकार शिक्षा देने लगे, क्या पड़ेगा वो उसमें, ज्ञान सबसे श्रेष्ठ है। ज्ञान जो है, मान लीजिए वस्तु है दर्पण, ज्ञान है, लेकिन लोचन मिला कैसे देखोगे? दर्पण है, अपने चेहरा कुछ देखना है, दर्पण है, अब देखोगे कैसे? लोचन नहीं तो बल ज्ञान है, लोचन। ऐसे सभी ज्ञान को वृद्धि करके बता रहे थे, उनको खबर मिला तो महाप्रभु क्रोधित होकर दोनों भाई एक दिन गए। तो लंबा लंबा कथा है, एक सन्यासी थे जैसे पत्नी रखे हुए थे और वो दारू भी पीते थे, तो उसी सन्यासी के दर जाके फल मूल खाया और बाद में नित्यानंद प्रभु से बोला, नित्यानंद आनंद अनुभव, आनंद लाओ आनंद। तो नित्यानंद महाप्रभु को समझ में, नित्यानंद सारा देश विदेश घूमे हैं, उनको पता है आनंद क्या चीज होता है। बोला आनंद क्या होता है श्रीपाद, आनंद क्या होता है? लगता है शोरा है, दारू है। महाप्रभु तभी फल खा रहे थे, भले वहां से उठे और गंगा स्नान करके तैर के दोनों ही गंगा तैर के चले गए और जाके देख रहे हैं आचार्य जी आश्रम में बैठा हुआ है और सभी लोग बैठा के महाप्रभु को देख कर और सुना सुना के बोल रहा है भक्ति से ज्ञान बढ़ा है। और महाप्रभु का क्रोध तो अभी इतना तक हो गया, चाह के उस प्यास आसन के खींच कर मारा। और सीता ठाकुर नीच उन्होंने बोले, अरे बुरा है ऐसे मार रहे, मर जाएगा तो समझ लेना पति पिता की शक्ति। और ये तो इतने खुश हो गए, इतने खुश है, केवल ये ढंग के रचना किया, केवल हमें शासन करे, हमें प्रभु के जैसे, हमें दास के भांति, हमें गलती करने से तो मारना ही चाहिए। तो वो केवल मार खाने के लिए गलती कर रहे थे, उचित व्यवहार क्यों नहीं करे? तो प्रभु है, मैं चैतन्य का दास हूं, मैं चैतन्य का दास हूं। इसी प्रकार उन्होंने भवर के तो बहुत खुश हो गए, बहुत खुश हो गए कि हाँ आज मुझे प्रभु जैसे भवर करते थे भवर किए। इसी प्रकार अद्वैत आचार्यों जी हरिदास ठाकुर के भी साथ बहुत बड़े, उन बहुत ही अंतरंगा थे, इतनी बड़े आचार्यों होकर एक मलेशिया यवन कुल के लोगों को उनका आश्रय दिए, उनको भोजन खिलाते थे और अपने माता जी के श्राद्ध के दिन, श्राद्ध के दिन उन्होंने श्राद्ध पात्रों पर ब्राह्मण नवद्वीप के श्रेष्ठ ब्राह्मण को ना दे, शांतिपुर के श्रेष्ठ ब्राह्मण को ना देकर पहले श्राद्ध पात्रों हरिदास ठाकुर को दिए। इस सारा ब्राह्मण लगभग ब्राह्मण जितने थे अलग हो गए, उनको एक गड़िया गांव में होते हैं, वो उससे कोई बात नहीं कर सकता है, रोड से चलने के लिए भी तकलीफ है, पानी लेने नहीं देते हैं, कोई उनके घर पे नहीं जा सकता, वो किसी के घर पे नहीं जा सकता, ऐसे करके रख दिया था आचार्यों को भी। तो इसलिए ये मत समझिए कि कठिनाई, ये दिखाया कि कठिनाई सबको उठाना पड़ता है। प्रचार आदि करोगे आराम से रहोगे तो ठीक है, प्रचार आदि जाओगे समस्या नहीं होगा, समस्या तो होते ही रहेगा। श्री कृष्ण प्रभु लोग बताए हिमाचल में गए तो कितना तकलीफ हुआ। हम लोग उड़ीसा और बिहार के बॉर्डर में हम लोग वैष्णव महाराज सभी, तो हम लोगों का हालत बहुत खराब हो गया था, पेट पाट के ठीक कर दिए थे। तो इसी प्रकार होता है प्रचार में, कोई ये बात नहीं। तो इसी प्रकार उन्होंने जब ऐसे प्रचार ये लोग किए तो तो अभी क्या है, इसी प्रकार उन्होंने प्रचार करके अद्वैत आचार्य जी एक बार वीरभद्र के उधर खड़दहो नित्यानंद प्रभु चले गए, उनको सब भी मना के आए, फिर अपने गांव में शांतिपुर में 125 साल हो गए उनकी आयु। एक दिन अच्युतानंद को बोले कि सबको बुलाओ, जितने महापुरुष के परिकार जो बची हुई थी सबको बुलाया, वहीं पे कीर्तन आरंभ हुआ, महासंकीर्तन हुए। महासंकीर्तन के बीच में उन्होंने मंदिर में मदन मोहन के मंदिर गोपाल के मंदिर में प्रवेश किए, मदन गोपाल के मंदिर में प्रवेश किए और उनको और कोई देखा नहीं। तब से वहां से मंदिर में प्रवेश करके अंतर्धान हो गया। ये कोई जड़ शरीर नहीं है, ये दिव्य शरीर है, ना महाप्रभु जी, ना नित्यानंद प्रभु, ना अद्वैत आचार्य प्रभु, कोई किनकी शरीर किसी का नहीं रहे। तीसरे प्रकार अद्वैत आचार्य जी लीला करके इस भक्ति हमारा आचार्य है, इतना करुणा है उनकी, और करुणा करके सभी हम लोग जैसे महाप्रभु आए थे, जो भी हम लोग सब समान रूप से इस भक्ति का प्रचार करने के लिए ये अद्वैत आचार्य का अवदान है, इन्होंने इतनी करुणा इनके हृदय में है, तो हम लोग उनके चरण कमल में नमन कटी कटी प्रार्थना, और उनके उनको अष्टक भी है, अद्वैत हुंकार आदि गर्जन आदि और है, आप उनके भजन में जा जा अद्वैत आचार्य कृपा में आप लोग ये गा सकते हैं। चैतन्य भागवत में उनकी लीलाएं बहुत है, चैतन्य चैत छठवां अध्याय में उनके तत्वों के वर्णन है, तो इसको आप लोग पढ़ सकते हैं, उनके चरण कमल प्रार्थना कर सकते हैं, बहुत ही कृपालु हैं। और यदि कई चाहे बहुत सारे विष्णु तत्व के अंदर आते हैं, तो हिसाब से जो भी चैतन्य महाप्रभु के अंतर्गत जितने बाबाजी वगैरह हैं, ये लोग ये अद्वैत सप्तमी को ग्रंथ प्रसाद नहीं लेते हैं, एकादशी प्रसाद गौरी मठ में, पता नहीं गौरी मठ में एकादशी प्रसाद लेते हैं एकादशी, तो इसलिए अद्वैत आचार्य विष्णु तत्व हैं, इसलिए आप हो सके तो एकादशी प्रसाद ले सके, और नहीं हो सके तो मंदिर व्यवस्था जो करेगा आप ले सकते हैं। आप इसी प्रकार अद्वैत आचार्य से चरण कमल में, क्योंकि इनकी बहुत बड़ा अवदान हमारा है, जिनके कृपा से महाप्रभु जी आए, जिनके कृपा से ये सभी लोगों को समान रूप से भक्ति मिल रहे हैं, उनकी इतनी करुणा है, इनके उद्धार के लिए उनकी सारा प्रयास रहा, सभी को उद्धार के लिए इस कृष्ण प्रेम मिले, एकदम शुद्ध प्रेम इनको मिलने के लिए इनकी सारा प्रयास रहे, और इसके उनकी कृपा से हम लोग सबको मिल रहे हैं उनके चरण कमल में प्रार्थना। चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि अद्वैत आचार्य बोले कि जो मुझे मानता है चैतन्य का नहीं मानता, तो मैं उनको संहार करूंगा, और चैतन्य महाप्रभु बोले जो मुझे केवल पूजा कर अद्वैत को नहीं मानेगा, मैं उनको भक्त के हिसाब से मैं उनको ग्रहण नहीं करूंगा। इसलिए दोनों में ये है, तो आचार्य के चरण कमल में प्रार्थना करना चाहिए, उनकी कृपा से बड़े करुणा उनके हृदय में, और भंडारी है, सामान लेना है तो भंडारी के पास जाना पड़ेगा कि नहीं, हाँ, तो इसलिए भंडारी के पास जाना है, वो छुप के भी महाप्रभु नहीं देने से छुप के दे देगा। हरे कृष्णा, जय श्री अद्वैत आचार्य के, अद्वैत आचार्य की महा आविर्भाव महा महातिथि के, अद्वैत सप्तमी की। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। जय जगत गुरु श्री प्रभुपाद की समय तो कृष्ण बलराम वासी भक्त बिंद की।